हाँ जी
है बताए
हैं गैलरी और ऊपर की गैलरी
और
हाँ जी चंद्रवंशी गैलरी और सूर्यवंशी गैलरी ऊंची वाली गैलरी और नीचे वाली गैलरी कौन सी में ज्यादा होते हैं और कौन सी गैलरी में कम होते हैं। नीचे वाली गैलरी में याद है और ऊपर वाली गैलरी में कम होते हैं। और తెలుగులో చెప్పు
మనిషి ఆత్మ మూడు శరీరం ఆత్మ
क्या बोला रिपीट करो तेलुगु में।
हाँ
जी कारण शरीर माने जो बिंदु आत्मा और सूक्ष्म शरीर माने ज्योति बिंदु आत्मा। जब ऐसे दुनिया की स्थूल चीजों को भूल जाती है पुरानी दुनिया की सारी चीजों को भूल जाती है सिर्फ ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में रहती है नई दुनिया की प्लानिंग में रहती है और अलौकिक सेवा में बिजी रहती है बुद्धि तब उसे कहते हैं सूक्ष्म वतनवासी। आत्मा है ना मन बुद्धि सहित है ना तो वो मन बुद्धि सूक्ष्म में बिजी रहती है उसको कहते हैं सूक्ष्म वतनवासी। और तीसरा रूप है स्थूल शरीर में रह करके जो स्थूल कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं वाचा में आते हैं आंखों से देखते हैं वो सब है स्थूल शरीर। और हाँ जी
गुप्तदान महाकल्याण
हाँ
बोली में आया
हाँ जी
एक हाथ
देने वाला और दूसरा हाथ अकेला लेने वाला तो उस गुप्त दान में ज्यादा प्राप्ति होती है। अगर दूसरों को पता लग गया तो जो गरीब होंगे देने योग्य नहीं होंगे उनको मन में हेती आएगी कि हम तो नीचे हैं और ये दान देने वाले ऊंचे हैं, इसलिए बाप तो गरीब निवाज है ना, तो गरीबों का ध्यान रखता है ना, इसलिए ये नियम बना दिया कि एक हाथ देने वाला और दूसरा लेने वाला। जो गरीब हैं उनको देने वालों का और लेने वालों का कोई पता नहीं चलना चाहिए। और
मानव सेवे माधव सेवा, मानव सेवे माधव सेवा।
हाँ, मनुष्य जो है वो सब आत्माएं हैं, मनुष्य भी हद के बाप के बच्चे हैं, और उन मनुष्यों के अंदर जो आत्मा है वो भी बेहद आत्माओं का बेहद बाप का बच्चा। तो परिवार की अगर सेवा की तो जैसे बाप की सेवा कर दी, और बाप की सेवा की तो जैसे पूरे परिवार की सेवा कर दी, इसलिए ये कहावत है। और कार्पोरियल माने साकार, और इनकार्पोरियल माने निराकार। और हाँ जी,
घर वाले मधुबन व्यक्ति का पैसे देने से उनका क्या प्राप्ति
है?
मुक्त प्राप्ति नहीं
है क्या?
भगवान बहन जी की पैसे देने मुक्त प्राप्ति नहीं
बोला तो है। एक हाथ देने वाला और मधुबन में जो भी निमित्त है वो एक हाथ लेने वाला, निमित्त किसने बनाया? बाप ने निमित्त बनाया। तो उस हाथ को देने में कोई हर्जा है क्या? नहीं, इसलिए एक ही लेने वाला है, एक ही देने वाला है, वो गुप्त दान ही है। और फिर दूसरी बात, जो भी आप देते हैं वो बंद कब्र में देते हैं, खुले हुए कब्र में नहीं देते हैं। तो जो भी निमित्त मात्र को दिया वो आपने खोल करके दिया क्या? उसकी जान में तो नहीं आएगा, उसे भी पता नहीं चलेगा, वो सीधा बाप के खजाने में पहुंचेगा। इसलिए एक ही लेने वाला है, संशय लाने की बात नहीं है। हाँ जी, और जब हम रूह बन करके बैठते हैं, मन देह को भूलते हैं और प्रकृति के मध्य में ज्योतिबिंदु आत्मा की याद में रहते हैं, या प्रैक्टिस करते हैं ज्योतिबिंदु आत्मा को याद करने की, तो जैसे हमारी रूहानी यात्रा शुरू होती है और फिर आत्मिक स्थिति में रह करके जो साकार में निराकार बाप आया हुआ है उससे बुद्धि का कनेक्शन जोड़ते हैं, आत्मा का मिलन बुद्धि के द्वारा किससे करते हैं? साकार में आए हुए निराकार बाप से कनेक्शन करते हैं, तो हमारी उस समय रूहानी यात्रा हो जाती है। बेसिक में जब थे तो साकार में आए हुए निराकार बाप का हमें परिचय नहीं था, उस समय हम समझते थे कि हम आत्मा ज्योतिबिंदु और हमारा बाप या तो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है या तो परम धाम वासी है, क्योंकि मुरली में बोला है ब्रह्मा है बैल और बैल पर सदैव सवारी नहीं होती है। तो जब ब्रह्मा रूपी बैल पर शिव सवार नहीं होगा तो कहाँ होगा फिर, है कहाँ का वासी है, है जहाँ का वासी है वहाँ होगा, तो परमधाम वासी होगा। तो हम उस समय या तो परमधाम में ज्योति बिंदु बाप को याद करते थे या तो ब्रह्मा के तन में याद करते थे। फिर सन 76 में, 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया और उसके बाद नंबरवार बाबा की मुरली के अनुसार जो जो आत्माएं आत्मा रूपी सुई की कट को उतार कर बेसिकली बाप से डायरेक्ट सीखने योग्य बनती गई, अर्थात मनुष्य शक्ति के बाप को पहचानती गई, वो फिर साकार में निराकार को याद करने की योग्य बन जाती है। क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा तो न तो जन्म मिलता है, जन्म देने वाला मूल रूप में बाप ही होता है और वर्षा देने वाला भी बाप ही होता है। ब्रह्मा के द्वारा कोई वर्षा नहीं मिलता और देखने भी आता है कि ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो क्या वर्षा दिए बगैर बाप चला गया क्या? नहीं, बाप ऐसा बाप है जो और धर्म पिताओं के मुकाबले तुरीय है। और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, राज्य स्थापन नहीं करते हैं, और हमारा बाप राजधानी स्थापन करके वापस जाता है। तो सन 76 में वो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया जिसके द्वारा रूहानी बाप हमको प्रैक्टिकल में साकार में 2500 वर्ष की अविनाशी राजधानी स्थापन करके जाते हैं। वो नई दुनिया का वर्षा हमको दे कर जाते हैं। तो उस बाप से वर्षा लेना है तो उसे याद भी करना है, इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं। हाँ
जी, एक बात कह रहे थे, हम पर्सनल मुलाकात का दूर लेते हैं, इसके अध्यक्ष मेरे साथ प्रयत्न करो बोल के मैं ये बोला, पर्सनल मुलाकात था ग्रेट वन, सो ग्रेट टू एंड ग्रेट थ्री अध्यक्ष मेरे तो हवा को भी हम नहीं पहचान सकते, फिर सेटिस्फेक्शन कैसे रहे बाबा?
मना पर्सनल मुलाकात अनिवार्य है। अच्छा, लक्ष्मी वर्षा लेती है या नहीं लेती है? नहीं लेती, लेती है। कितनी पर्सनल मुलाकात करती है? करती है नहीं करती है? तो बाप अव्यक्त बाप दादा ने, एक मिनट, सन 69 से लेकर के और 76 तक लगातार जोर लगाया कि बच्चे अव्यक्त बन करके अव्यक्त बाप से मिलन मनाओ। लेकिन इस बात पर कोई बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, फिर बाप साकार में प्रत्यक्ष हो गया। परंतु साकार में आने पर भी सब बच्चों से एक साथ तो मिलन नहीं हो सकता, इसलिए अव्यक्त वाणी में आखिरी इन बाप दादा को कहना पड़ा, अब पर्सनल मुलाकात बंद होती है, अभी थोड़ा समय रह गया, बाप की प्रत्यक्षता अव्यक्त में होगी या साकार रहने से होगी। बाप जब तक साकार रहेगा तब प्रत्यक्षता होगी या अव्यक्त हो जाएगा। अव्यक्त का मतलब इस शरीर में रहते रहते वो मिलन नहीं हो पाएगा। कैसा? लगाव पूर्वक जो हो जाता है। बाप जब बेलगाव हो जाएगा मन बुद्धि से तो उस मिलन का प्रभाव होगा, या अभी जो साकार मिलन होता है उसका प्रभाव होगा। प्रभावी मिलन कौन सा है? हैं?
सेटिस्फेक्शन से दूर हो जाना
है।
बहुत सेटिस्फेक्शन रहता है।
हाँ,
हाँ,
लेकिन पर्सनल मुलाकात जो अभी साकार में होती है वो साकार संपन्न है या अधूरा है? कैसा है? अधूरा है। और जब संपन्न हो जाएगा तो हमें प्राप्ति ज्यादा होगी या अभी प्राप्ति ज्यादा हो जाएगी? हैं? संपन्न होने पर जास्ती प्राप्ति होगी, इसलिए बाप कहते हैं अव्यक्त बनो। अव्यक्त से अव्यक्त का मिलन प्रभावी होगा और व्यक्त से व्यक्त का मिलन उतना प्रभावशाली नहीं हो सकता। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। याद से प्राप्ति होती है या उनको प्राप्ति होगी जो सरेंडर होकर के सदैव कंधे पर चढ़े हुए हैं, साकार में मिलन मनाए रहे हैं लेकिन बुद्धि कहाँ रखी रहती है? बाहर की दुनिया में या अंदर? बाहर की दुनिया में रखी रहती है। उनका साकार मिलन लगातार होता रहता है लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं होने वाली। तो फिर हमको क्या करना है? है? क्या करना है? जैसे लक्ष्मी याद करती है ऐसे हमको भी याद में रहना है। जरूर प्राप्ति होनी है, बुद्धि योग की प्राप्ति है, कोई शरीर की प्राप्ति नहीं है। और हाँ जी, क्या बोला?
वो शरीर चाहिए, आत्मा भी चाहिए।
हैं?
शरीर शरीर अलग है, आत्मा अलग है?
अलग है,
ये दोनों चाहिए।
दोनों चाहिए,
दोनों मिलने से भी काम करते हैं।
पुरुषार्थ करने के लिए शरीर भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए। हाँ,
दोनों अलग अलग होने से?
अलग अलग नहीं होते हैं अभ्यक्त स्टेज में। जब शंकर संपन्न स्टेज में आ जाता है या जो भी अष्टदेव संपन्न स्टेज में होंगे तो शरीर के अंदर आत्मा होगी या नहीं होगी? होगी, लेकिन वो आत्मा मन बुद्धि से उपराम होगी या शरीर से अटैचमेंट होगा? उपराम होगी, शरीर से अलग नहीं होगी। शरीर से अलग होकर के फिर कोई पुरुषार्थ नहीं होता, ये बात ठीक है। लेकिन शरीर में रहते हुए भी आत्मा शरीर के अटैचमेंट से उपराम हो सकती है और तभी सब प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। और कोई भाई को अनुवाद तो कर दो तेलुगु में।
श्रीनाथ का जगन्नाथ का अर्थ मुरली में बाबा बोलते हैं, श्रीनाथ मना श्रेष्ठात्मा का नाद, जगन्नाथ मना जगत के नाद। मुरली में दूसरे मुरली में बाबा बोलते हैं श्री मना श्रीलक्ष्मी, श्रीलक्ष्मी मना श्रेष्ठ आत्मा का नया आत्मा का नारायण
नाथ स्वामी
ब्रह्म बाबा नारायण
बनेगा। सतयुग में नारायण बनेगा तो देवताओं का नाथ बनेगा, देवताओं का स्वामी। हाँ, और श्रेष्ठ आत्माएं सतयुग में होंगी ना, वो श्रेष्ठ आत्माएं जो सतयुग में देवता बनेंगी वो यहाँ भी तो श्रेष्ठ बनती हैं, हैं? हाँ, तो जब श्रेष्ठ बनती हैं, तो उस समय ब्रह्मा की सोल संपन्न होगी या नहीं होगी? हैं? संपन्न हो जाएगी तो वो श्रीनाथ कहा जाएगा। परंतु एक मुरली में बोला है श्रीनाथ और जगन्नाथ हैं एक ही चीज। कैसे? जो श्रीनाथ वाली आत्मा है वो जगन्नाथ में प्रवेश करती है, इसलिए एक ही शरीर से दो आत्माएं पार्ट बजाती। तो एक ही हुए या दो अलग अलग हुए? एक ही हुए। फिर बोला परंतु जैसा देश वैसा वेश बनाया जाता है। तो जब श्रेष्ठ आत्माओं का संग होता है तो उनको श्रीनाथ कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा जब श्रेष्ठ आत्माओं के साथ थे, जो भोली बाली आत्माएं थी, बुद्धिवादी नहीं थी रुद्रमाला के मड़कों की तरह, तो वो भोली वाली आत्माओं का नाथ था, पढ़ाई पढ़ाने के निमित्त बना। वो ही आत्माएं फिर सतयुग में जाकर के देवता बनती हैं, परंतु वो आत्माएं संगम युग में अपने शरीर से देवता नहीं बनती। कौन बनती है? जो रुद्रमाला के मणके हैं वो संगम युग में ही देवताओं से भी ऊंची स्टेज प्राप्त कर लेते हैं। देवताओं से ऊंची स्टेज क्या है? भगवान भगवती। तुम किसके बच्चे हो? भगवान भगवती के बच्चे हो। तो यथा राजा तथा प्रजा। तो जो भगवान भगवती के बच्चे हैं, और वो भगवान तो सबका है, सारे जगत का है, या कोई की सदगति करता है कोई की नहीं करता है, सबकी सदगति करता है तो सबका है, इसलिए वो जगन्नाथ है। तो संगम युग में जगन्नाथ है या सतयुग में जगन्नाथ है? संगम युग में जगन्नाथ, उस जगन्नाथ में ही वो श्रीनाथ भी प्रवेश करके पार्ट बजाता है, इसलिए बाप दादा कंबाइंड कहा जाता है। उसमें बाप भी है, है और दादा भी है, सृष्टि का पहला पत्ता भी है, इसलिए दोनों एक ही चीज है। और हाँ जी, दान देते समय तीसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो प्राप्ति कम होगी। तो बाबा जो लोग मधुबन बनाने के लिए घर देते हैं उनका दान तो गुप्त नहीं रहता है, तो क्या उनको प्राप्ति कम होगी क्या? किसी ने मकान दिया, चुपचाप जाकर के रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराई दिया, किसी को पता ही नहीं लगा, लेने वाले को पता चला और देने वाले को पता चला, तो प्राप्ति नहीं होगी क्या? होगी या नहीं होगी? दूसरी बात, कोई ने मकान बनाया, आओ भाई तुम भी सहयोग दो, आओ भाई तुम भी सहयोग दो, तो कोई ने धन का सहयोग दिया, कोई ने तन का सहयोग दिया, कोई ने लोहे का सहयोग दिया, कोई ने सीमेंट का सहयोग दिया, तो दूसरों को पता चलेगा या नहीं चलेगा? है, चलेगा। और देने वाले ने, जो मकान बनाने वाला है उस मकान के ओनर को सहयोग दिया, मकान ओनर की प्रॉपर्टी बनी या शिव बाबा की प्रॉपर्टी बनी? प्रॉपर्टी किसकी बनी? है, है? बाबा की बनी। बाबा तो लेता ही नहीं किसी का मकान, ब्रह्मा कुमारियां लेती है। बाबा तो ज्यादा से ज्यादा ईश्वरीय सेवा करने के लिए 10-12 वर्ष के लिए लेता है, या जो जितने साल के लिए दे, तो प्रॉपर्टी किसकी बनती है? है, ऑनर की बनती है। तो किसको दिया? दिया किसको? अरे मिटमेट को दिया या शिव बाबा के यज्ञ में दिया? अरे किसको दिया? देहधारी को दिया या निराकार को दिया? देहधारी को दिया। तो इसका उसका हिसाब किताब देहधारी से बनेगा, बनेगा तो जरूर, क्योंकि लेन देन का हिसाब किताब होता है। जिसने जो दिया उसको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भर करके जरूर देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? लेन देन का हिसाब किताब नहीं होता है, हिसाब किताब होता है। तो अंतर पड़ जाता है। अब जिसमें जितना ज्ञान होगा उतना गहराई से काम करेगा, ज्ञान कम होगा लेकिन मान मर्तबा लेने के लिए आदि हो चुका है जीवन में, भक्ति मार्ग में भी ना मान मर्तबा लेता रहा, तो वो आदत पड़ी हुई है कि हमें मकान जरूर बना करके देना है यज्ञ में, ताकि ब्राह्मणों की दुनिया में हमारा नाम बाला हो जाए। तो अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है, जरूर अंतर पड़ेगा। अगर यहाँ का यहाँ ही मान मर्तबा ले लिया, दान तो दिया लेकिन पब्लिक के बीच में मान मर्तबा ले लिया, तो वहाँ मान मर्तबा कम होगा या ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। हर बात का हिसाब किताब है। और हाँ जी, किसी ने पूछा है कोटिलिंगेश्वर करोड़ों लिंगों का ईश्वर, उस कोटिलिंगेश्वर के साथ करोड़ों लिंगों की पूजा क्यों होती है? इसलिए होती है कि आदि में श्रेष्ठ होते हैं या अंत में श्रेष्ठ होते हैं? श्रेष्ठ कब होते हैं? हैं? आदि में श्रेष्ठ होते हैं और अंत में वो ही तमो प्रधान बन जाते हैं, नीचे गिरते हैं। तो सतयुग में होते हैं सतयुग के अंत तक 2 करोड़, और 2 करोड़ से आधे 1 करोड़ पहले आधे जन्मों में, कितने जन्मों में? आधे माने कितने? 4 जन्मों में श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, जो परमधाम से उतरती हैं, और बाद के सतयुग के 4 जन्मों में उनके मुकाबले 2 नंबर की आत्माएं होती हैं, क्योंकि सतयुग के अंत में कितनी कलाएं कम हो जाती हैं? 2 कलाएं कम हो जाती हैं। इसलिए कोटि लिंगों का भी ज्ञान है, 2 कोटि का नहीं, कोटि का ज्ञान है। और हाँ जी, अरे तेलुगु में बोल दो। तो कोई कोई के अंदर प्रश्न तो आता है लेकिन झिझकते हैं कि हम हिंदी नहीं बोल पाएंगे। हाँ हाँ जी हाँ जी, हैं बोर्ड
है? हाँ, क्या आपके काम
बोर्ड लिंग है बोर्ड माने लो गोल है ये तो को तेलुगु का कोई शब्द है बोर्ड लिंग हिंदी में तो पता नहीं है एक ही गोलाई है क्या नहीं है
ये पानक नहीं आधार नहीं
आधार नहीं है
ये बोर्ड लिंग अकेला
नहीं यूज़लेस
आधार नहीं किसी कहीं रखा नहीं है हैं?
किसी को भी उपयोग नहीं
है
सभी को यूज
बोर्डिंग की वैल्यू नहीं वो तो ठीक बात है जो निराकार शिव ज्योति बिंदु है वो ही बोर्ड लिंग है उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उससे कोई वर्षा नहीं मिलता सारी सृष्टि के 500-700 करोड़ मनुष्यों को वर्षा तभी ही मिलता है जब वो आत्माएं झाड़ के ऊपर बैठे हुए शंकर को जो मनुष्य सृष्टि का पिता आदम है उसको पहचान लेती है तब वर्षा मिलता है उस साकार में आए हुए निराकार से वर्षा मिलता है वो बोर्ड लिंग नहीं है सिर्फ निराकार बोर्ड लिंग है इसलिए बोर्ड लिंग है कि चंद्रवंशियों से लेकर के और जितने धर्म वाले हैं वो सब निराकार को याद करने वाले हैं और वो निराकार को याद करने वाले उस बाप से जो वर्षा पाना चाहिए वो प्राप्त नहीं करते हैं 16 कला संपूर्ण वो डूब जाते हैं हिंदी में बोर्ड कहते हैं डूबने वाले को क्या कहते हैं जो डूबने वाला है उसे कहते हैं बोर्ड तुम सब पार्वतियां हो तुम वो नहीं माना और धर्म में जाने वाली पार्वतियां नहीं है पार लगाने वाली धनवती माने धन वाली पार्वती माने पार लगाने वाली नहीं है और आत्माएं और तुम सब पार्वतियां हो माने पार लगाने वाली हो बीच में डुबोने वाली बूढ़ने वाली नहीं हो तो वो हुआ बोर्ड लिंग तुम पार्वती हो गए क्यों क्योंकि तुमने साकार में निराकार को जान लिया इसलिए पार्वती हो वो सब बूढ़ मती हैं मती बुद्धि कैसी है उनकी सब की बुद्धि डुबोने वाली बुद्धि है और तुम्हारी पार लगाने वाली बुद्धि है तो बहुत बढ़िया शब्द निकाला बोर्ड लिंग जिसे तेलुगु वाले ही जानते हैं क्या जिनको आंध्रा नाम दिया है वो ही जानते हैं जो सागर के किनारे रहते हैं और कोई देश कोई स्टेट भारत का नहीं है जो सागर के सबसे नजदीक रहता हो और सबसे जास्ती प्रमाण में सागर के नजदीक रहता हूँ। तो देखो आंध्रा ही बोर्ड लिंग का अर्थ जानता है और वो तेलंगाना वाला दूर है। देखो ये अंग्रेजी अर्थ समझ में आ जाए तो हमें बताओ।
लहसुन जो है ना
है
लहसुन
लहसुन
हाँ वो खून को प्यूरिफाई करता है
हाँ,
फिर वो बीपी को डाउन कर देता
है,
बीपी को भी कम कर देता है
हाँ,
तो उसको क्यों नहीं खाना है?
क्योंकि लहसुन जो खून को प्योरीफाई करता है वो खून में उत्तेजना भी लाता है और खून में उत्तेजना आने से रज और वीर्य पतला होता है। उत्तेजना आने से इंद्रियों में पवित्रता भंग होती है, इसलिए मना किया है बाबा ने कि लहसुन नहीं खाना है ब्राह्मणों को। भले ब्लड प्रेशर वालों को फायदा करेगा, जब तक उनमें वो बीमारी है, बाकी सामान्य रूप से कोई को भी ब्राह्मणों को लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए उत्तेजक होने के कारण। जैसे हींग है, हींग भी उत्तेजना लाने वाली है। भूख को बढ़ाने वाली है, इंद्रियों में गर्मी पैदा करती है। है हाँ हिंग हिंगवा हाँ हाँ गर्म है, बहुत गर्म है। और चेन्नई में हाँ
आदिनाथ में बंद करो,
आदिनाथ को बंद कर दिया।
मंदिर में बैठा हुआ है, बाहर में मंदिर में मूर्तियों को बैठा हुआ दिखाया
हाँ,
बाहर में चेन्नई में से बंद करके दिखाया
हाँ हाँ ये जगन्नाथ जो है वो ऐसा ही पार्ट बजाने वाला है, बाहर की दुनिया में है तो कांटों के जंगल में है, जेल में है। जैसे जेल में तीन पैर पृथ्वी मुश्किल से मिलती है, ऐसे ही जगन्नाथ को इस बाहर की दुनिया में तीन पैर पृथ्वी ठहरने के लिए नहीं मिलती। अगर एक जगह रहेगा तो भस्मासुर उसके ऊपर सवार हो जाएगा। इसलिए दिखाया है कि बाहर की दुनिया में जब तक है जगन्नाथ तब तक वो बंधन में है, बंधायमान है, जैसे जेल में है। जैसे कृष्ण भगवान को जेल में दिखाते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होने से पहले जेल में है और जब प्रत्यक्ष हो जाता है तो दुनिया की नजरों से गुप्त हो जाता है। प्रत्यक्षता पहले पहले आठ के बीच में होगी या सारी दुनिया के बीच होगी, तो दुनिया से गुप्त हो जाएगा या दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा? गुप्त हो जाएगा। और है जब काकी का नारा बहुत लंबा हो जाएगा है। हाँ, अभी काकी नारा में एक ही सेंटर है, फिर बहुत हो जाएंगे। हाँ, पंचवटी। हाँ, राम को जब वनवास हुआ तो लंबे समय तक पंचवटी में रहे। वट माने वृक्ष, जैसे हमारा कल्प वृक्ष झाड़ का वृक्ष है, इसमें तो सारी दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य दिखाए गए। वट वृक्ष जिसका यादगार कलकत्ते में दिखाया गया है, बनियन ट्री, ऐसे ही पांच वृक्ष मिलकर के जहाँ इकट्ठे होते हैं उस स्थान का नाम रख दिया है पंचवटी। पंचवटी माने पांच पांडव रूपी वृक्ष, उनकी छत्र छाया में सीता निवास करती थी। सीता के साथ राम और लक्ष्मण ही निवास करते थे। तो ये पंचवटी कोई दूसरी वटी नहीं है, पांच पांडवों का संगठन दिखाया गया। जिनके बीच में रहते रावण सीता का हरण करके ले जाता है वो पंचवटी। और यूपी में पहले उर्दू भाषा बहुत चलती थी, क्योंकि सारी यूपी में मुसलमानों का राज्य हो गया था, तो जिसका राज्य होता है उसकी भाषा चलती है। जैसे पाकिस्तान में कौन सी भाषा चलती है? उर्दू। तो भारत के उत्तर प्रदेश में भी उर्दू शासन में चलती थी, और जैसा शासक होता है यथा राजा तथा प्रजा हो जाती है। तो पहले उर्दू बहुत चलती थी जब बाबा ने वाणी चलाई, अभी उर्दू का उतना प्रभाव नहीं है, अभी हिंदी ज्यादा चलती है। और ओम शांति।